नमस्कार साथियों, नई दिशा के सभी श्रोताओं को जगत चंदौली
और प्रेमा नेगी का प्यार भरा सलाम। जगत, आज हम अपने श्रोताओं के लिए कार्यक्रम में क्या खास लेकर आए हैं?
प्रेमा, वैसे तो कार्यक्रम में बताई जाने वाली हर बात ही खास है और अपना विशेष महत्व रखती है, और जहाँ तक आज की बात है तो हम आज अपने कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को HIV टेस्टिंग और जाँच के बारे में बताने जा रहे हैं।
तो ठीक है, हम जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और पहले सेगमेंट यानी कि जानो अनजाने की तरफ चलते हैं।
बिल्कुल।
दोस्तों, आमतौर पर HIV की जांच के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है ELISA, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ये बहुत ही साधारण सा ब्लड टेस्ट होता है। ये टेस्टिंग सुविधा सभी ICTC में फ्री उपलब्ध है।
मगर प्रेमा, मैंने HIV टेस्टिंग के बारे में सुना है कि एक कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होता है।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। असल में ELISA टेस्ट को हमेशा वेस्टर्न ब्लॉट से कन्फर्म किया जाता है, और फिर आपको 2 महीने बाद दोबारा टेस्टिंग के लिए आना होगा।
हाँ, मुझे याद आया, हमने नई दिशा के एक पिछले एपिसोड में विंडो पीरियड की बात की थी, क्योंकि ELISA टेस्ट HIV के खिलाफ हमारे शरीर में बने एंटीबॉडीज को जांचता है, और उन एंटीबॉडीज को बनाने में उसे 6 हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए दोबारा कन्फर्मेटरी जांच 2 महीने बाद की जाती है।
अरे वाह जगत, तुम्हें तो सब कुछ याद है।
अरे इतना ही नहीं प्रेमा, मैं दोस्तों को ये भी याद दिला दूं कि अगर आपको अंदेशा है कि शायद आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं जहां HIV का खतरा रहा हो, यानी असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित सुई का प्रयोग या बिना जांचा हुआ रक्त चढ़ा हो, तो जांच जरूर करवाएं। और कन्फर्मेटरी टेस्ट से पहले जो 2 महीने का विंडो पीरियड है उसमें बहुत सावधान रहें और डॉक्टर और काउंसलर की सलाह माने।
और हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि HIV की जाँच के लिए और भी टेस्ट है, जैसे PCR टेस्ट और P24 टेस्ट वगैरह, जो आमतौर पर नहीं किए जाते। ये टेस्ट ब्लड बैंक्स द्वारा किए जाते हैं या फिर प्रयोग के दौरान या उच्च जांच के दौरान किए जाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों, एक और तरीका है HIV की जांच का, CD4 और वायरल लोड टेस्टिंग।
बिल्कुल दोस्तों, इसमें हमारे रक्त में मौजूद CD4 नाम के एक सेल की गिनती की जाती है, जिसके आधार पर HIV का पता लगाया जाता है। ये जांच आमतौर पर सरकारी और निजी अस्पतालों दोनों में ही की जाती है। यदि आप HIV पॉजिटिव हैं, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप नियमित CD4 और वायरल लोड जांच करवाएंगे।
तो दोस्तों, ये थी HIV टेस्ट के बारे में जानकारी।
दोस्तों, जरूरी ये है कि हम HIV टेस्ट जरूर करवाएं।
ये जो कहे वो जो कहे सुन लो, बात जो सही दिल को लगे चुन लो, करना है क्या तुम्हें ये तुम्ही करो फैसला।
और प्रेमा, अब बात करें इनामों की।
इनामों की?
भाई मेरा मतलब था इनामों से भरे हमारे सेगमेंट भेजा फ्राई की।
ओ, तो तुम भेजा फ्राई की बात कर रहे हो।
हाँ। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था, HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए सामान्य तौर पे कौन सा टेस्ट किया जाता है,
और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ELISA।
और एपिसोड 33 का सही जवाब देकर आज की भेजा फ्राई कैप पाने वाली विजेता का नाम है आभा जी नजीबाबाद से। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो।
और दोस्तों, अब हमारा आज का सवाल।
और आज का सवाल है, ऐसा कौन सा अवसरवादी संक्रमण या बीमारी है जो HIV से जुड़ा हुआ है? अपना सवाल एक बार फिर से सुनिए, ऐसा कौन सा अवसरवादी संक्रमण या बीमारी है जो HIV से जुड़ा हुआ है? और आपके ऑप्शंस हैं ए ल्यूकीमिया, बी TB, सी सर्दी और जुकाम, और डी कैंसर। अपने ऑप्शंस फिर से सुनिए, ए ल्यूकीमिया, बी TB, सी सर्दी और जुकाम और डी कैंसर।
दोस्तों ये है वो सवाल जो आपको बना सकता है हमारी भेजा फ्राई कैप का विजेता। तो फिर देर किस बात की है, फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND37 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ए बी सी या डी और लिखकर हमें भेज दीजिए 9717678223 पर, यानी 9717678223 पर।
और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का।
दोस्तों HIV की एक बड़ी वजह इस्तेमाल की हुई सुई का फिर से इस्तेमाल करना है, और उस स्थिति में तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जहां पर व्यक्ति ड्रग्स लेने का आदी हो, क्योंकि इन परिस्थितियों में लोग नीडल और सिरिंज को शेयर करते हैं जिससे HIV का खतरा बढ़ जाता है।
और आज हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं एक ऐसे मेहमान जो ड्रग्स के लिए सुइयों का इस्तेमाल करते थे और जिसकी वजह से आज वो HIV पॉजिटिव हैं। और आज ये हमारे स्टूडियो में आप सब से अपने अनुभव शेयर करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने HIV पॉजिटिव होने के बाद अपनी जिंदगी को फिर से संभाला। आइए मिलते हैं हमारे मेहमान से।
आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें।
मेरा नाम सोनू है, मैं वर्ल्ड विजन इंडिया के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो HIV एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं।
अच्छा ये बताइए, आप ड्रग्स कब से लेते थे और आपने अपने HIV स्टेटस के बारे में कैसे जाना?
1997 में मैंने ड्रग्स लेनी चालू कर दी धीरे धीरे, यानी सिगरेट द्वारा मैं ड्रग्स लेता था। धीरे धीरे करते करते मेरे को एक पन्नी पे पीने की आदत पड़ गई, नशा मेरे पे हैवी हो गया। 3-4 महीने में मेरी तबीयत खराब हुई। मैंने एक अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे सलाह दी ब्लड चेक की। मेरे ब्लड चेक हुआ तो नॉर्मल रिपोर्ट आई मेरी। कुछ ही दिन बीते, जैसे 3-4 महीने फिर बीते, तो वर्ल्ड विजन एक संस्था आई। उस संस्था ने HIV के बारे में जानकारी दी कि ऐसे ऐसे HIV हो सकती है आपको इन चीज़ों से, तो ब्लड टेस्टिंग कराया, तब मुझे पता चला मैं HIV से ग्रस्त हूँ।
अच्छा ये बताइए, जब आपने अपने स्टेटस को जाना तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
सबसे पहले तो मैंने ड्राइवरी छोड़ी और उसके बाद अपने आप से घृणा सी होने लगी, नफरत सी होने लगी। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि भाई मेरे को ये चीज़ होगी। पहले तो मम्मी मेरी रो पड़ी कि ये क्या हुआ तुझे, ऐसी कौन सी बीमारी है ये कि जो तुझे हुई है, क्योंकि मैं कमज़ोर हो चुका था बहुत ज़्यादा। मम्मी ने पापा से बात करी तो पापा कहने लगे ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसे, तो मुझे संभालने लगे घर वाले। तो उन्हीं दौरान मैं वर्ल्ड विजन के साथ काम करने लग गया। काम करते करते मेरे को और लोगों से, जैसे बहुत टाइम तक पॉजिटिव लोग थे, उनके साथ मिलवाया गया, यानी उन्होंने ये दिखाया कि ये लोग भी तो जी रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जी सकते।
अच्छा ये बताइए कि सुइयों द्वारा ड्रग्स के सेवन और HIV के खतरे का क्या संबंध है?
संबंध यही है जी कि एक ही सुई को 10 जने इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे 10 को किसी को HIV नहीं है, तो एक दूसरे के ब्लड जाने से, कीटाणु जाने से तो हमारे हो सकती है HIV। अगर 10 में एक को भी है तो उन 9 को भी होगी, क्योंकि हम निडल एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही सिरिंज कर रहे हैं और एक ही सुई को इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। वो बार बार क्या होता है कि रह जाते विषाणु, तो दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाने से HIV हो सकती है।
और आपसे हमारा आखिरी सवाल है कि जो ड्रग यूजर्स शादीशुदा हैं उनके लिए आप क्या सलाह देंगे?
पहला तो सलाह मेरी ये है कि ड्रग्स ना ली जाए, और वो भी खासतौर इंजेक्शन द्वारा। फिर भी आदत नहीं छूट रही है तो कई संस्थाएं ऐसी हैं जो ड्रग्स छुड़ाने पे काम कर रही हैं। अगर लेते भी हैं तो उनको नई नीडल, नई सिरिंज इस्तेमाल करनी चाहिए, किसी दूसरे की ना तो सुई लगाएं और ना ही अपनी सुई किसी दूसरे को दें।
क्या करें जिंदगी इसको हम जा मिले, इसकी जान खा गए रात दिन के गिले।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मेहमान,
और अब समय है आपकी बात का। तो दोस्तों आपकी बात में आज हम शामिल कर रहे हैं हमारे यूपी के श्रोता के मैसेज को, जो पूछ रहे हैं कि जो लाल धब्बे आ जाते हैं उनका साइज कितना होता है और क्या बस एक ही कारण होता है जो आपने बताया। दोस्तों ये बात कर रहे हैं हमारे पिछले एपिसोड में बताई गई त्वचा पर निकलने वाले लाल गुलाबी धब्बों या दानों की, जो कभी कभी HIV संक्रमण के कारण हो जाते हैं। दोस्त, हम आपको बता दें कि ऐसे धब्बों का कोई और कारण भी हो सकता है। तुरंत अपने निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टरी सलाह के बिना किसी भी शारीरिक परिस्थिति को स्वयं जांचने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें और ना ही उसे नजरअंदाज करें। और ये भी जरूर सोचना कि कहीं आप जोखिमपूर्ण परिस्थिति से तो नहीं गुजरे। अगर ऐसा कोई शक है तो तुरंत HIV टेस्ट करवाएं।
और हमारा दूसरा मैसेज है पुनीत जी का दिल्ली से, जो पूछ रहे हैं अगर HIV टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्या करना चाहिए और क्या ये जिंदगी का अंतिम मोड़ है। पुनीत जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो नई दिशा पर कितने ही HIV पॉजिटिव दोस्तों की बातें सुन चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति का HIV टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके शरीर में उपस्थित CD4 सेल का टेस्ट किया जाता है। अगर वो सामान्य आता है तो वो अपनी जिंदगी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही बिताता है, बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। और अगर CD4 सामान्य से कम आता है तो उसे ART की दवाइयाँ दी जाती हैं और वो उन दवाइयों के साथ भी एक सामान्य जिंदगी बिताता है। और हम आपको ये भी बता दें कि आज की डेट में HIV के साथ भी आप एक पूरी जिंदगी जी सकते हैं, HIV वायरस को मैनेज कर सकते हैं।
जो हो गया सो हो गया, लोगों से तू डरना नहीं, सामना करेंगे मिलके।
दोस्तों, अगर आपके मन में भी HIV के संबंध में कोई भी सवाल है तो आप हमें अपना सवाल खतों या फिर ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर सकें।
चिट्ठी भेजने के लिए आप हमारा पता भी नोट कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और हमारा ईमेल आईडी है naydishaa@gmail.com।
जगत, अब जानकारियाँ तो हम काफी दे चुके हैं, क्यों ना थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए।
बिल्कुल प्रेमा, तो दोस्तों आइए सुनते हैं मनोरंजन और जानकारी से भरपूर हमारे रेडियो धारावाहिक जीवन की राह की 37वीं कड़ी।
दोस्तों, पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना जयपाल स्कूल में राधा का एडमिशन करा देता है। उधर विनोद रबिता से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और रबिता उसे माफ कर देती है।
और जयपाल के दुकान के मुहूर्त के मौके पर प्रधान भी अपने पैसे मांगने वहां पहुंच जाता है और जयपाल के पैसे वापस ना करने पर वो जयपाल की दुकान का सारा सामान बाहर फेंकने की धमकी देता है। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
तुम लोग ऐसे मानने वाले नहीं हो। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इनका सामान उठाकर बाहर करो दुकान से।
प्रधान जी, मेरी बात तो सुनिए।
अरे हट आगे से,
ठहरो।
सूरज, तू?
हाँ जयपाल, मैं। प्रधान जी, ये क्या कर रहे हैं आप?
क्या कर रहा हूँ? अरे अपने पैसे वसूल कर रहा हूँ।
ऐसे पैसे वसूल करेंगे? किसी गरीब आदमी की कोशिश को नाकामयाब करके?
क्या मतलब?
देखिए, आप गाँव के प्रधान है, गाँव के लोगों के बारे में सोचना आपका फर्ज है। और जब गांव का एक आदमी अपने घर परिवार के लिए आमदनी का कोई जरिया बना रहा है तो आप उसकी कोशिश को नाकामयाब करने यहाँ चले आए?
अरे सूरज, तू इन छोटी जात के लोगों को नहीं जानता।
खबरदार प्रधान जी,
छोड़ना यार सूरज।
नहीं यार, अगर आपने जयपाल के बारे में इस तरह की कोई बात की तो फिर ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर गाँव का प्रधान ही लोगों में भेदभाव करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? और जहाँ तक जानने की बात है, मैं अपने दोस्त जयपाल को भी जानता हूँ और आपको भी।
सूरज, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो।
बेइज्जती तो आपने जयपाल की है।
सूरज, मेरी
तो चुप कर यार। प्रधान जी, आपको इसके लिए जयपाल से माफी मांगनी होगी।
माफी? और मैं? ये मेरा कर्जदार है और इसके साथ मैं चाहे जैसा मर्जी सलूक करूं।
यही बात है तो ये लीजिए, ये रहे आपके पैसे।
सूरज,
अब जयपाल आपका कर्जदार नहीं है। अब तो आपको जयपाल से माफी मांगनी ही होगी और वो भी पूरे गांव के सामने। क्यों भाइयों?
सूरज छोड़ ना यार, तू रहने देना, ये गांव का प्रधान है तू।
नहीं जयपाल, यही एहसास तो मैं इन्हें दिलाना चाहता हूँ। गांव के प्रधान को गांव के लोगों की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए।
सही कहते हो सूरज भैजी, अब देख क्या रहे हो प्रधान जी, माफ़ी मांगिए।
माफ़ी? और जयपाल से?
हाँ, माफ़ी तो आपको मांगनी ही पड़ेगी।
अरे कटोरे तू।
कभी नहीं।
देखिए इस कन्या का फोटो देखिए, ये कन्या विनोद बाबू के लिए बहुत सही रहेगी।
नहीं पंडित जी, कोई और फोटो दिखाइए।
तो फिर ये देखिए, ये फोटो कन्या साक्षात लक्ष्मी का रूप है, घर में आएगी तो घर धन से भर जाएगा।
नहीं नहीं पंडित जी, भगवान की दया से हमारे घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, मुझे तो बस एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे विनोद को खुश रख सके।
माँ माँ।
अरे विनोद बेटा आ जा बैठ।
हाँ माँ।
देख पंडित जी कुछ लड़कियों के फोटो लाए हैं, तू भी देख ले।
अरे विनोद बाबू देखो बड़ी सुंदर है, देखो देखो।
फोटो वो किस लिए माँ?
अरे बुद्धू इतना भी नहीं समझता, तेरी शादी के लिए। और किस लिए?
नहीं माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी।
शादी नहीं करनी?
हाँ माँ, मैं अभी कुछ काम करना चाहता हूँ, पिताजी के साथ काम में हाथ बटाना चाहता हूँ, पर अभी शादी नहीं करना चाहता।
अच्छा।
और पंडित जी आप भी तब तक बेकार की कोशिश करके अपना वक्त जाया मत कीजिए। ये लीजिए आपकी दक्षिणा।
जैसी आपकी मर्जी। अच्छा बहन जी मैं चलता हूँ।
गंगा के महत्वपूर्ण होने की वजह न सिर्फ गंगा जल है बल्कि
पानी तो खत्म हो गया, अब क्या करूं? सुमन
के गंगोत्री से शुरू होकर
सुमन
ओफो, इस घर में तो कोई चैन से पढ़ाई भी नहीं कर सकता। क्या है, दिखाई नहीं देता कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ?
हाँ बेटा वो तो ठीक है, मैं कह रही थी कि घर में पानी खत्म हो गया है, तुम अगर दो बाल्टी पानी बाहर से ला देती तो।
क्यों, मैं क्यों, तुम खुद नहीं जा सकती क्या? और वैसे भी दिखाई नहीं देता, मैं पढ़ाई कर रही हूँ।
ठीक है मैं खुद ही चली जाती हूँ।
छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे।
क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में?
सरिता उसे मैं छोड़ूंगा नहीं।
क्या हो गया, किसे नहीं छोड़ेंगे?
मेरी बेइज्जती हुई है और वो भी सारे गांव के सामने।
क्या हो गया, किसने की आपकी बेइज्जती?
सूरज ने, और वो भी उस दो कोड़ी के आदमी जयपाल के लिए।
क्या?
मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जयपाल मेरी बेइज्जती की वजह सिर्फ तू है, सिर्फ तू।
अच्छा आप शांत हो जाइए, आप बैठिए, आप पहले बैठिए तो सही।
मैंने भी अगर तुझसे इस बेइज्जती का बदला ना लिया ना तो मैं भी इस गांव का प्रधान नहीं, मैं इस गांव में तेरा जीना हराम कर दूंगा। जयपाल तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा मैं।
अच्छा पहले आप बैठिए तो सही, पहले आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, आप शांत हो जाइए।
और अब बारी है क्या किया जाए की। दोस्तों क्या किया जाए में आज हम अपने श्रोताओं से जानने वाले हैं कि अगर उनके सामने किसी दवा खाने में या किसी क्लिनिक में एक ही सिरिंज का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे?
ऐसी स्थिति में मैं रोकूंगा और जो एक इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं उनको बताऊंगा कि भाई एक इंजेक्शन का प्रयोग करने से एक ही बीमारी दूसरे में जा सकती है, इसलिए ऐसा ना करें।
तो उसका हम विरोध कर सकते हैं कि एक ही सुई में इस्तेमाल करने से बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, सबसे पहले तो एड्स है, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी है।
का विरोध होना आवश्यक है, इससे HIV संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
विरोध करूंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक डॉक्टर होने के नाते वो ऐसा नहीं कर सकते, उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि हम मरीज के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करूंगी क्योंकि एक सुई को एक से अधिक बार प्रयोग करने से HIV का संक्रमण हो जाता है।
वाकई दोस्तों अगर हम अपने सामने कुछ भी गलत होता हुआ देखते हैं तो हमें उसका विरोध जरूर करना चाहिए।
खुली सी चोट लेकर बड़ी सी टी सुलेकर आहिस्ता आहिस्ता।
और आपसे विदा लेने से पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे
अपने सामूहिक संवाददाताओं का जिन्होंने हमारे श्रोताओं के विचारों को जानने का प्रयास किया
और सामुदायिक रेडियो हैवलवानी और मंदाकिनी की आवाज का जो इस कार्यक्रम को पहाड़ों में बसे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं
और इसके अलावा हम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं जिनके वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और इसके अलावा हम आपको याद दिला दें कि अगर आप इनाम जीतना चाहते हैं तो कार्यक्रम में हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जरूर भेजिएगा SMS करने के लिए हमारा नंबर है
9717678223 यानी कि 9717678223 और अपने सवाल भी आप हमें SMS करते रहिए हमारी और आपकी अगले हफ्ते इसी समय फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार।